My beloved brothers and sisters,
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज सुबह आपके साथ होने पर मैं बहुत आभारी हूँ। मैं आपके विश्वास और प्रार्थना में रुचि चाहूंगा जब मैं आपको संबोधन करता हूँ। सारे युगों से पुरुषों और महिलाओं ने इस नश्वर अस्तित्व के संबंध में ज्ञान और समझ को पाने और इसमें उनकी भूमिका और उद्देश्य को जानने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ शांति और सुख के मार्ग को भी चाहा है। ये खोज हम में से हर एक करता आया है। ये ज्ञान और समझ संपूर्ण मानव जाति को उपलब्ध है। ये उन सच्चाइयों में है जो अनंत हैं। सिद्धांत और अनुबंध के खंड एक आयत 39 में हम पढ़ते हैं, देखो प्रभु परमेश्वर है और आत्मा गवाही देती है और गवाही सच्ची है और ये सच हमेशा हमेशा के लिए कायम रहता है। ये एक कवि ने लिखा था, भले आकाश चल जाए और पृथ्वी का दरिया फट जाए, सच जीवन का सार सबका सामना करेगा। अनंत अपरिवर्तित हमेशा हमेशा के लिए। कुछ पूछेंगे, इस तरह का सच कहाँ मिलेगा और हम कैसे इसे पहचानेंगे? भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ को कर्टलैंड ओहायो में दिए गए प्रकटीकरण के द्वारा प्रभु ने कहा था, सच उन बातों को ज्ञान है जैसे वे हैं और जैसी वे थी और वे आने वाले समय में वैसी रहेंगी। सच की आत्मा परमेश्वर की है और कोई भी मनुष्य उसकी आज्ञाओं का पूरी तरह पालन किए बिना इसे नहीं पा सकता। वे जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है और सच और ज्ञान को प्राप्त करता रहता है जब तक वह सच में गौरवान्वित रहता है और सब बातों को जानता है। कितना आनंददायक वादा है, वह जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है सच और ज्ञान को प्राप्त करता रहता है जब तक वह सच में गौरवान्वित रहता है और सब बातों को जानता है। इस प्रबुद्ध युग में जबकि सुसमाचार की पूर्णता को पुनर्स्थापित किया जा चुका, सच्चाई की खोज में आपके लिए और मेरे लिए अनजाने सागर में जाने या अनजाने मार्ग में यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। एक प्रेमी स्वर्गीय पिता ने हमारी यात्रा का मार्ग तैयार किया और अचूक मार्गदर्शन आज्ञाकारिता का उपलब्ध कराया है। सच और ज्ञान, सच का ज्ञान और हमारा महानतम सवालों के जवाब हमें तब मिलता है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं। हम अपने जीवन भर आज्ञाकारिता सीखते रहते हैं। जब हम बहुत छोटे थे तब से आरंभ करके जिन पर हमारी देखभाल की जिम्मेदारी थी उन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश और नियम तय किए थे। जीवन हम सब के लिए सरल हो जाएगा यदि हम ऐसे नियमों की पूरी तरह पालन करते हैं। हालांकि हमसे बहुत से लोग अनुभव के द्वारा आज्ञाकारी होने की समझ पाते हैं। जब मैं बड़ा हो रहा था, हर गर्मी के जुलाई से सितंबर तक मेरा परिवार यूटा प्रोवो कैनियन में विविन पार्क पर हमारे घर में रहने जाता था। कैनियन में उन चिंतामुक्त दिनों का मेरे अच्छे मित्रों में एक डैनी लार्सन था जिसके परिवार के पास भी विविन पार्क में एक घर था। हर दिन वह मैं और लड़कों के स्वर्ग में घुमा करते, धारा और नदी में मछली पकड़ना, पत्थर और दूसरे खजाने इकट्ठा करना, पैदल चलना चढ़ना और यानी प्रत्येक दिन प्रत्येक घंटे प्रत्येक क्षण का आनंद लेना। एक सुबह डैनी और मैंने निर्णय लिया कि हम सब कैनियन में मित्र उस शाम कैंप फायर करेंगे। हमें केवल नजदीक के मैदान में एक जगह साफ करनी थी जहां हम सब इकट्ठा हो सके। जून घास जिसने मैदान का ढका हुआ था सूखी और चुबन भरी थी। घास के कारण यह मैदान हमारे उद्देश्य के लिए उपयुक्त ना था, इसलिए हमने ऊंची ऊंची घास को हाथों से उखाड़ना शुरू किया। काफी बड़े क्षेत्र को गोलाकार में साफ करने की हमारी योजना थी। हमने अपनी पूरी ताकत से खींचा और जोर लगाया, लेकिन हम केवल कुछ मुट्ठी भर घास ही उखाड़ पाए थे। हम जान गए थे, और तभी मेरे 8 वर्ष के दिमाग में एक विचार आया जिसे मैं बहुत उत्तम उपाय सोचता था। मैंने डैनी से कहा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इस घास को आग लगा देते हैं। हम केवल घास को गोलाकार में आग लगा देंगे। वह तुरंत तैयार हो गया और मैं अपने घर की ओर दौड़ा और माचिस ले आया। कहीं आप में से कोई ये ना सोचे कि 8 वर्ष की इतनी कम आयु में हमें माचिस का उपयोग करने की अनुमति थी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि डैनी और मुझे दोनों को इनका उपयोग केवल बड़ों की देखरेख में करने की आज्ञा थी। हम दोनों को कई बार आग के खतरों से सावधान किया गया था। हालांकि मैं जानता था कि मेरा परिवार माचिस कहां रखता था और हमें उस मैदान को साफ करना था। बिना दोबारा सोचे मैं अपने घर की ओर दौड़ा और कुछ माचिस निकाल ली, होशियारी से कि कहीं कोई देख ना ले। मैंने तुरंत इन्हें अपनी जेब में डाल लिया। मैं डैनी की ओर वापस भागा, उत्साहित था कि मेरी जेब में हमारी समस्या का उपाय था। मुझे याद है मैं सोच रहा था कि आग केवल उतनी ही स्थान जलाएगी जितना हम चाहते थे, और उसके बाद ये जादू से अपने आप बुझ जाएगी। मैंने माचिस को पत्थर पर रगड़ा और सूखी जून घास में आग लगा दी। ये इतनी तेजी से जलने लगी मानो ये पेट्रोल में भीगी हो। पहले पहले डैनी और मैं बहुत खुश हुए जब हम घास को भस्म होते देख रहे थे, लेकिन जल्द ही हमें पता चल गया कि आग अपने आप बुझने वाली नहीं थी। हम घबरा गए क्योंकि एक कुछ नहीं कर सकते थे। धधकती हुई आग की लपटें ऊपर पहाड़ की ओर जंगली घास की तरफ जाने लगी। चीर के पेड़ और जो कुछ इसके रास्ते में आता खतरे में पड़ गए थे। अंततः हमारे पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय मदद के लिए भागने के। जल्द ही जितने भी लोग विभिन्न पार्क में थे इधर उधर दौड़ दौड़ कर घीले टाट से लपटों को मार मार कर आग बुझाने का प्रयास करने लगे। कई घंटों बाद बचे हुए अंगारों को दबा दिया गया। सालों पुराने चीड़ के पेड़ और घर आग की लपटों से बचा लिए गए थे। डैनी और मैंने उस दिन कई लेकिन महत्वपूर्ण सबक सीखे थे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण था आज्ञाकारिता। जिस तरह हमारी शारीरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम और कानून हैं, उसी तरह से प्रभु ने हमारी आत्मिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश और आज्ञाएं दी हैं, ताकि आमतौर पर इस जोखिम भरे जीवन में सफलता से हमारा मार्ग निर्देशन हो सके और हम अंततः अपने स्वर्गीय पिता के पास वापस लौट पाए। सदियों पहले एक पीढ़ी से जो पशु बलिदान को की परंपरा से डूबी थी, सैमुअल ने निडरता से कहा था, सून मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। इस प्रबंध में प्रभु ने भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ को प्रकट किया था कि उसे केवल हृदय और करने वाला मन चाहिए, और करने वाला और आज्ञाकारी इन अंतिम दिनों के स्वयं प्रदेश में उत्तम पदार्थ पाएगा। सभी भविष्यवक्ता प्राचीन और वर्तमान जानते हैं कि आज्ञाकारिता हमारे उद्धार के लिए महत्वपूर्ण है। नफी ने कहा था, मैं जाऊंगा और वह काम करूंगा जिसकी आज्ञा प्रभु ने दी है, जबकि अन्य अपने विश्वास और आज्ञाकारिता में संकोच करते हैं। नफी ने एक बार भी उसे करने से पीछे नहीं हटा जिसे प्रभु ने उसे कहा था, और इसके कारण अनगिनत पीढ़ियां आश्रित हुई हैं। आत्मा को झंझोड़ने वाला आज्ञाकारिता का वर्णन इब्राहिम और इसहाक का है। इब्राहिम के लिए कितना कष्टदायी रहा होगा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, अपने प्रिय पुत्र को मोरिया प्रदेश ले जाकर उसकी बलि चढ़ाना। क्या हम इब्राहिम के हृदय के दुख की कल्पना कर सकते हैं जब वह उस बताए गए स्थान को जा रहा था? अवश्य ही पीड़ा ने उसके शरीर को तोड़ डाला होगा और उसके मन को आहट किया होगा जब उसने इसहाक को बांधा, वेदी पलटाया और मारने के लिए चाकू उठाया था। प्रभु ने अधिक विश्वास और पूरे भरोसे के साथ उसने परमेश्वर के आदेश को माना था। कितनी आनंददायी थी ये एक घोषणा, ये कितने आश्चर्यजनक स्वागत के साथ ये आई थी। लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। इब्राहिम की जांच और परीक्षा की गई थी और उसकी इस विश्वसनीयता और आज्ञाकारिता के कारण प्रभु उसके साथ ये अद्भुत प्रतिज्ञा बनाई थी। पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। यद्यपि हमारी अपनी आज्ञाकारिता को साबित करने के लिए इतनी कठिन और हृदय विदारक तरीके से जांच नहीं की जाती, फिर भी आज्ञाकारिता की सबों की अपेक्षा की जाती है। अक्टूबर 1873 में भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ने कहा था, आज्ञाकारिता स्वर का सर्वप्रथम नियम है। अध्यक्ष गॉर्डन बी हिंकली ने कहा था, अंतिम दिनों के संतों का सुख, अंतिम दिनों के संतों की शांति, अंतिम दिनों के संतों की उन्नति, अंतिम दिनों के संतों की संपन्नता और इन लोगों का अंत उद्धार और उत्कर्ष परमेश्वर के सलाहों पर आज्ञाकारिता से चलने पर निर्भर करता है। आज्ञाकारिता भविष्यवक्ताओं की विशेषता है। इसने इन्हें युगों से शक्ति और ज्ञान प्रदान किया है। हमारे लिए यह समझना आवश्यक है कि हम भी उसी शक्ति और ज्ञान में स्रोत से अधिकारी हैं। ये हम में से हर एक के आसानी से उपलब्ध हो सकता है यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। सालों से मैं उन अनगिनत लोगों को जानता हूं जो विशेष रूप से विश्वसनीय और आज्ञाकारी रहे हैं। मैं उनके द्वारा आशीषित और प्रेरित हुआ हूं। मैं ऐसे दो व्यक्तियों का वर्णन करना चाहता हूं। वॉल्टर क्राउस गिरजे का वफादार सदस्य था जो अपने परमेश्वर के साथ अपने परिवार के साथ उस स्थान पर रहता था जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी कहलाता था। उस समय उस क्षेत्र में स्वतंत्रता की कमी के कारण कष्टों सहने के बावजूद भाई क्राउस एक ऐसा इंसान था जो प्रभु से प्रेम और उसकी सेवा करता था। वह विश्वसनीयता और निष्ठापूर्वक उन कामों को करता था जो उसे दिए जाते थे। दूसरा व्यक्ति योहान डेंडोर्फर हंगरी का नागरिक था जो जर्मनी में गिरजे के परिवर्तित बना और उसका 1911 में 17 वर्ष की आयु में बपतिस्मा हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उसने अपने आप को अपने ही देश डेब्रिसन शहर में कैदी के रूप में पाया था। हंगरी के लोगों की स्वतंत्रता छीन ली गई थी। भाई वॉल्टर क्राउस जो कि भाई डेंडोर्फर को नहीं जानता था को उसके घर के शिक्षक और उससे नियमित भेंट करने की जिम्मेदारी दी गई। भाई क्राउस ने अपने घर के शिक्षक साथी को फोन किया और कहा, हमें भाई योहान डेंडोर्फर से भेंट करने की जिम्मेदारी दी गई है, क्या आप इस हफ्ते मेरे साथ उसे सुषमाचार संदेश देने चलोगे? और उसने ये भी कहा, भाई डेंडोर्फर हंगरी में रहता है। उसके हैरान साथी ने पूछा, हमें कब जाना है होगा? कल, भाई क्राउस ने जवाब दिया। हम घर कब वापस आएंगे? साथी ने पूछा। भाई क्राउस ने जवाब दिया, ओ एक हफ्ते में यदि हम वापस आए। दोनों घर के शिक्षक साथी भाई डेंडोर्फर से मिलने चले दिए। रेल और बस से उत्तर पश्चिम जर्मनी से डेब्रिसन हंगरी काफी लंबी यात्रा है। भाई डेंडोर्फर का युद्ध के पहले से कोई घर का शिक्षक नहीं था। अब जब उसने इन दो प्रभु के सेवकों को देखा, वह कृतज्ञता से भर गया कि वह उससे मिलने आए थे। पहले पहले उसने उनसे हाथ नहीं मिलाया। वह सीधा अपने कमरे में गया और एक छोटा बॉक्स लाया जिसमें उसने अपना दशमांश रखा था, जिसे उसने कई सालों से जमा किया था। उसने अपने घर के शिक्षकों को दशमांश दिया और कहा, अब प्रभु के साथ मेरा लेन देन बराबर हो गया है। अब मैं अपने आप को प्रभु के सेवकों के साथ हाथ मिलाने के योग्य महसूस करता हूं। भाई क्राउस ने मुझे बाद में बताया कि वह इस विश्वासी भाई से अत्यधिक प्रभावित हुआ था, जो कई सालों तक गिरजे के संपर्क में नहीं था, फिर भी आज्ञाकारिता से और नियमित रूप से अपने बहुत कम आय का 10% दशमांश के रूप में रखता आया था। उसने इसे बचाया, उसे मालूम नहीं था कब या कभी इसे देने का सौभाग्य उसे मिलेगा। भाई वाल्टर क्राउस 9 वर्ष पूर्व 94 साल की आयु में गुजर गए। उन्होंने विश्वसनीयता और आज्ञाकारिता से अपने पूरे जीवन भर सेवा की और मेरे लिए और उन सबों के लिए जो उसे जानते थे एक प्रेरणा थे। जब कोई जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने कभी प्रश्न नहीं उठाया, कभी नहीं बड़बड़ाया और कभी बहाना नहीं बनाया। मेरे भाइयों और बहनों, इस जीवन की महान परीक्षा आज्ञाकारिता है। इससे हम उनकी जांच करेंगे, प्रभु ने कहा, ये देखने के लिए कि क्या वे उन सब कामों को करेंगे जिसका आदेश उनका प्रभु परमेश्वर उन्हें देता है। उद्धारकर्ता ने कहा था, क्योंकि वे सब जो मेरे हाथों से आशीष पाएंगे, वे उस नियम का पालन करने से आएंगी जिसके लिए वे आशीष निर्धारित और उससे संबंधित शर्तों पर दी गई थी, जैसा कि वे उन्हें संसार के आरंभ से स्थापित किया गया था। आज्ञाकारिता का हमारे उद्धारकर्ता से बढ़कर दूसरा कोई उदाहरण नहीं है, जिसके विषय में पौलुस ने कहा था, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। अपने पवित्र मिशन का सम्मान करते हुए उद्धारकर्ता ने परिपूर्ण जीवन जीकर परमेश्वर के वास्तविक प्रेम की प्रदर्शित किया था। उसने कभी भी घमंड नहीं किया, वह अहंकार से कभी नहीं फूला, उसने कभी भी विद्रोह नहीं किया, वह हमेशा विनम्र रहा, वह हमेशा निष्ठावान रहा, वह हमेशा आज्ञाकारी रहा। यद्यपि वह धोखेबाजी के गुरु शैतान द्वारा लालच में डालने के लिए आत्मा द्वारा निर्जन में ले जाया गया, यद्यपि 40 दिन और 40 रात उपवास के कारण वह भूखा और शारीरिक तौर पर कमजोर था, फिर भी जब शैतान ने यीशु को बहुत लुभावने और लालच भरे प्रस्ताव दिया, उसने उन सबको अस्वीकार करते हुए हमें आज्ञाकारिता का दिव्य उदाहरण दिया। जब यातना की गतसमनी का सामना किया, जहां उसने इतना अधिक दर्द सहा कि उसका पसीना लहू के बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था, उसने ये कहते हुए एक आज्ञाकारी बेटे का उदाहरण दिया, पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। जैसा उद्धारकर्ता ने अपने आरंभिक प्रेरितों को निर्देश दिया था, वैसे ही वह आपको और मुझे निर्देश देता है। तुम मेरे पीछे हो लो। क्या हम आज्ञा मानने को तैयार हैं? वे ज्ञान जिसे हम खोजते हैं, वे जवाब जिसे हम जानना चाहते हैं, और वे शक्ति जो हम आज के कठिन और बदलते संसार की चुनौतियां का सामना करने के लिए पाना चाहते हैं, हमारे हो सकते हैं जब हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना चाहते हैं। मैं एक बार फिर प्रभु के शब्द दोहराना चाहता हूँ, वह जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है सच और ज्ञान का प्राप्त करता रहता है, जब तक वह सच में गौरवान्वित रहता और सब बातों की को जानता है। ये मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हम उन उत्तम उपहारों से आशीषित हों जिनका वादा एक आज्ञाकारी के लिए किया गया, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, आमीन।